place in a village in Telangana district, Telangana area, and there a new assembly gathering has started. I was there at that time.
पिछले हफ्ते भाई तेलंगाना जगह में एक गांव में थे जहां एक नई कलीसिया का शुरुआत हुआ है.
एंड थ्री डेज दे हैड अ स्पेशल मीटिंग. रियली इट वाज अ गुड टाइम विद द सेंट्स देयर इन दैट विलेज, रिमोट विलेज.
और वो एक छोटे से गांव में दूर भाई का अच्छा समय व्यतीत हुआ क्योंकि वहां पे एक कलीसिया स्थापित हुई. तीन दिनों के लिए वहां एक स्पेशल सभा थी.
प्रे दैट द मिनिस्ट्री कंटिन्यूज देयर एंड द टेस्टिमनी विल कंटिन्यू देयर इन दैट एरिया.
और उस जगह के लिए वहां जो कलीसिया है और उसकी जो वो अगुवाई कर रहे हैं सच्चाई के बारे में उसके लिए प्रार्थना करें.
सो आई थैंक द सेंट्स फॉर प्रेइंग फॉर मी ड्यूरिंग माई मिनिस्ट्री देयर.
और भाई की जो मिनिस्ट्री है उसके लिए जो उन्होंने प्रार्थना की भाई उनका धन्यवाद देते हैं.
नाउ शैल वी टर्न टू अ पैसेज फॉर अ ब्रीफ टाइम ऑफ मेडिटेशन.
थोड़ा सा समय के मनन के लिए एक बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे.
ऑन अ सब वेरी फेमिलियर पैरेबल वी विल रीड, दैट इज लुक्स गॉस्पल चैप्टर 12 वी रीड.
लूका रचित सुसमाचार में से एक दृष्टांत जो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है उसके बारे में पढ़ेंगे.
वर्स 16
16 से 21
वी विल रीड इन द बिगिनिंग.
16 से 21 तक शुरुआत में पढ़ेंगे.
एंड ही स्पोक ए पैरेबल अन टू दम.
उसने उनसे एक दृष्टांत कहा.
ओके आई विल रीड इट. द ग्राउंड ऑफ अ सर्टन रिच मैन ब्रॉट फोर्थ प्लेंटिफुली एंड ही थॉट विद इन हिमसेल्फ सेइंग, व्हाट शैल आई डू बिकॉज आई हैव नो प्लेस टू बेस्टो माय क्रॉप्स. एंड ही सेड, This will I do, I will pull down my barns and build a greater, and there will I bestow all my crops and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years, take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up a treasure for himself and is not rich toward God.
हिंदी में ऐसा लिखा है, 16 से आगे पढ़ेंगे. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई. तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपना उपज इत्यादि रखूं. और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूं. और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे. परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे. तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं.
May the Lord bless the reading of this portion.
इस वचन पढ़े जाने पर प्रभु आशीष दे.
These days I was just thinking about some of the qualities of the leaders of the assembly.
थोड़े इस समय भाई जो लीडर हैं कलीसिया में उनकी क्या विशेषताएं होनी है उन पर ध्यान दे रहे थे.
As you know that is our study which is going on the Thursdays.
यही चीजों के बारे में थर्सडे को भी पढ़ते हम.
So in that connection I was thinking about one particular thing is mentioned about the assembly leader is that he should not be a covetous man or a greedy for money.
और जो कलीसिया के अगुवाइयों के बारे में एक गुण ये है कि वो पैसे का लालची नहीं होना चाहिए.
रिपीटेडली दिस मेंशन एंड एम्फसाइज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट.
और ये बार बार इस चीज पर धारणा दी गई.
एंड देन दिस थॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैड कम टू माय माइंड, सो आई थॉट आई विल स्टडी दैट.
तब भाई के मन में ये जो दृष्टांत पड़ा उसके बारे में मनन आया और उन्होंने सोचा कि इसके बारे में बताएंगे.
व्हाट बाइबल सेज अबाउट द मनी,
पैसे के बारे में वचन क्या कहता है.
व्हाट शुड बी अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द मनी एंड द वेल्थ,
और धन और वैभव के बारे में हमारा क्या विचार होना चाहिए.
यू नो द मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एवरीवन.
हमारे जीवन में पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है.
एज समबडी राइटली सेड 50% ऑफ द वेकिंग टाइम पीपल स्पेंड इन थिंकिंग अबाउट मनी.
किसी ने बहुत सही तरीके से कहा है कि 50% जो हमारा जागा हुआ समय है उसमें हम पैसों के बारे में सोचते हैं.
दैट मीन्स इफ यू आर 10 आवर्स यू आर अवेक, 5 आवर्स यू आर थिंकिंग अबाउट मनी.
इसका मतलब यह है कि 10 घंटे अगर आप जागे हुए हैं तो उसमें से 5 आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं.
आई थिंक सम पीपल इवन इन द स्लीप दे थिंक अबाउट इट.
और ऐसा भी है कि कई लोग सोते समय भी यही विचार करते हैं.
सो हाउ टू स्पेंड द मनी, हाउ टू अर्न द मनी, हाउ टू इन्वेस्ट द मनी, टू फ्रॉम हुम टू बोरो द मनी, हाउ नॉट टू गिव बैक द मनी, दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स.
पैसे के बारे में कई चीजों के बारे में सोचते हैं कि कैसे पैसा बनाऊं, किससे दू, किसको दू, किससे लू और किस जगह में उसका पैसे ढालू.
Somebody was telling me sometimes back, suppose so normally when a person die, we normally see the pulse and see whether he's that dead or not. That is normal tendency.
भाई को किसी आदमी ने पहले बताया था कि जब कोई मर जाता है तो हम उसकी जो नब्ज है उसको देखकर पहचानते कि वो मरा है कि नहीं.
सो माई फ्रेंड सेड अबाउट वन कम्युनिटी, ही सेड दैट टू सी वेदर द पर्सन इज डेड और नॉट दे यूज टू शो 10 रुपीज नोट ऑन द फ्रेंड ऑफ द फेस. सो इफ ही ओपन्स द आईज दैट मीन्स ही इज नॉट डेड.
भाई के उस मित्र ने कहा कि एक ऐसा झुंड भी था जो इस तरह से एक 10 रुपए का नोट एक मरे हुए आदमी के मुंह के सामने फहराते थे और ये कहते थे कि अगर वो उठ गया तो इसका मतलब वो मरा नहीं है.
सम पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट मनी.
कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं.
वन ऑफ माय कोलीग वाज देयर, वन ऑलवेज यूज्ड टू से दैट मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ अस हैव द ब्लड कॉर्पसल्स इन आवर ब्लड, यू नो रेड कॉर्पसल्स इन आवर ब्लड.
अब भाई के साथ एक काम करने वाले ये कहते थे कि हमारे जो रक्त है उसमें लाल सेल होते हैं.
एंड द सेड दैट इन उल्लासनगर सम पीपल आर देयर, दे हैव नॉट अ रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दे हैव मनी कॉर्पसल्स इन द ब्लड.
उन्होंने कहा कि उल्लासनगर जो जगह है उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके खून में पैसा है.
दैट मीन्स द फ्लोइंग ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मनी ओनली, दे हैव नो अदर थॉट.
उनके मन में हमेशा पैसे का ही विचार होता है, कोई और विचार उनके मन में नहीं आता.
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द बाइबल सेज अबाउट द मनी.
इसलिए हमारे को बहुत जरूरी है कि ये जानना कि वचन पैसे के बारे में क्या
कहता है. व्हेन स्टडीड अंडरस्टूड इज अ वास्ट सब्जेक्ट, इन फैक्ट बाइबल डिस्क्राइब्स अबाउट इट.
जब भाई ने इसका अध्ययन किया तो पता चला कि ये बहुत बड़ा विषय है.
देयर आर मोर देन 2000 रेफरेंसेस अबाउट द वेल्थ एंड द मनी इन द बाइबल.
बाइबल में 2000 से ज्यादा जगह पैसे के बारे में विचार लिखा हुआ.
देयर इज ओनली 500 रेफरेंस अबाउट द प्रेयर इन द बाइबल. दैट मीन्स यू से अंडरस्टैंड हाउ मच मोर इज रेफर्ड अबाउट द मनी एंड द वेल्थ इन द बाइबल.
और यद्यपि सिर्फ प्रार्थना के बारे में सिर्फ 500 जगह लिखा है, इसका आप विचार कर सकते हैं कि पैसे के बारे में किसकी अहमियत है.
लॉर्ड जीसस क्राइस्ट स्पोक अबाउट 38 पैरेबल्स, आउट ऑफ दैट 16 पैरेबल्स स्पीक्स अबाउट द वेल्थ एंड द मनी.
प्रभु यीशु मसीह ने 38 दृष्टांत बताए हैं, उसमें से 16 पैसे और उसके बारे में बताते हैं.
सो वी सी दैट द बाइबल ऑल्सो गिव्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन द वेल्थ एंड द हैंडलिंग एंड आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
इससे साफ पता चलता है कि वचन भी ये बताता है कि पैसा और उसको किस तरह से संभालना कितना है जरूरी.
दैट इज वाई वेन इट इज स्पोकन अबाउट द वेल्थ, अबाउट द लीडरशिप क्वालिटीज रिपीटेडली मेंशनड अबाउट द कवर्चसनेस, ग्रीडी नेचर एंड ऑल इज मेंशनड देयर.
और इसीलिए बार बार जहां अगुवाई के बारे में लिखा है वहां लालच और दूसरे चीज को लालसा के बारे में बताया गया.
मनी इन इटसेल्फ देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट इज एक्चुअली इज अ न्यूट्रल, इट इज नथिंग रॉन्ग, इट इज नॉट इविल.
पैसा अपने आप में बुरा नहीं है.
बट हाउ वी हैंडल द मनी, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट.
उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में कैसे सोचते हैं वो महत्वपूर्ण.
वी नो दैट देयर आर सम इंडिकेटर्स आर देयर व्हेन एवर वी यूज्ड टू टीच द चिल्ड्रन, यूज्ड टू सब देयर आर नॉन एज पोल्यूशन इंडिकेटर्स. वी से दैट इफ एरिया इज पोल्यूटेड देयर आर सम इंडिकेटर्स विल शो दैट द एरिया इज पोल्यूटेड.
किसी इस चीज को जानने के लिए कुछ चिन्ह है, जिस तरह हम अपने बच्चों को बताते हैं कि जो गंदी जगह है उसको गंदगी को दिखाने के लिए भी कुछ चिन्ह होते हैं.
फॉर एग्जाम्पल वी से द स्पैरो, इफ ए स्पैरो आर सो मच इन द एरिया, इन पर्टिकुलर एरिया, दैट शोज दैट दैट एरिया इज हैविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन.
अगर इस तरह एक दृष्टांत यह है कि जब हम देखते हैं कि बहुत सारी चिड़िया एक जगह में इकट्ठी हैं तो हमें पता चलता है कि वहां ऑक्सीजन ज्यादा है.
इफ देयर इज नो स्पैरो दैट मींस दैट एरिया इज लेस हैविंग लेस ऑक्सीजन दैट इज एन इंडिकेशन दैट इज नॉन एज स्पैरो इज ए इंडिकेटर ऑफ द क्लीन एनवायरमेंट.
और जहां पर कम चिड़िया है वहां पर हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन कम है. इसका मतलब यह है कि चिड़िया ऑक्सीजन का संकेत दिखाती है.
लेट मी टेल यू आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द मनी इज एन इंडिकेटर ऑफ आवर स्पिरिचुअल स्टेट.
हम पैसे के बारे में क्या धारणा रखते हैं वो हमारे आत्मिक जीवन का चिन्ह है.
इफ आवर एटीट्यूड इज नॉट राइट टुवर्ड्स द मनी नेचुरली शोज दैट आवर स्पिरिचुअल वैल्यूज आर वेरी वेरी लेस.
हमारा जो पैसे के बारे में धारणा है अगर अच्छी नहीं है तो हमें पता चलता है कि हमारे आत्मिक जीवन में परेशानियां गलत है.
इन द स्क्रिप्चर वी सी द फर्स्ट रेफरेंस अबाउट द वेल्थ एंड द हैंडलिंग ऑफ द वर्थ वी रीड इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13.
उत्पत्ति की 13वें अध्याय में पहली बार हम पैसे और उसके बारे में किस तरह का धारणा होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं.
एंड दैट इज रेफरिंग टू अब्राहम एंड लूथ. वी नो द इंसिडेंट वेरी वेल.
और ये अब्राहम और लूत के बारे में बताता है.
एंड देयर इज अ मैटर द वेल्थ वाज सो मच इंक्रीज दे कुड नॉट हैंडल इट एंड दे डिसाइडेड व्हाट टू डू विद दैट. नाउ वी हैव टू सेपरेट ईच अदर.
उनका धन इतना बढ़ गया कि उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है. इसलिए उन्होंने सोचा कि अब अलग होने में ही समझदारी.
वन इज अब्राहम अदर वन इज लूथ.
एक अब्राहम और दूसरा लूथ है.
हु वॉज अ स्पिरिचुअल.
कौन आत्मिक रूप में था.
यू लुक एट द एटीट्यूड अबाउट दिस टू पीपल टुवर्ड्स द वेल्थ.
धन के बारे में उनकी क्या धारणा थी उसके बारे में हम देखते हैं.
वी रीड द लॉट लिफ्टेड अप हिज आईज एंड सो दैट एरिया इज हैविंग ए लॉट ऑफ वेल्थ और द लैंड इज वेरी गुड एंड ही सो दैट सोडोम एंड गोमोरा इज बेटर देन दिस एरिया.
मतलब हम देखते हैं पढ़ते हैं कि लूत ने अपनी निगाह उठा के देखा कि जगह अच्छी है. सोडोम और गोमोरा के बाद में अच्छी जगह है.
ऑफ कोर्स ही मेट आस्क्ड मिसेस लूत आल्सो दैट्स व्हाट द स्क्रिप्चर गिव्स एन आइडिया अबाउट इट.
उसने ये हो सकता है कि अपनी पत्नी से भी ये पूछा. ये वचन हमें दर्शाता है.
सो दे डिसाइडेड टू टेक अप द एरिया वेयर लॉट ऑफ वेल्थ इज देयर.
और उन्होंने ये सोचा कि जहां ज्यादा धन संपत्ति है वो जगह को ले.
व्हाट वाज द इंडिकेशन वेरी क्लियरली सेज अबाउट द स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ लोट.
और ये किस चीज के बारे में चिन्ह था. ये उसकी आत्मिक जीवन के बारे में चिन्ह.
इवन दो ही वाज बोर्न अगेन ही हैज नो स्पिरिचुअल वैल्यूज वी सी दैट.
यद्यपि वो उद्धार पाया हुआ था फिर भी उसकी आत्मिक जीवन अच्छा नहीं.
सो हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द वेल्थ वाज इंडिकेशन ऑफ हिज स्पिरिचुअल स्टेट.
उसकी आत्मिक जो परिस्थिति थी उसका चिन्ह वो था कि उसके पैसे के बारे में क्या विचार.
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वेल्थ इज एन इंडिकेटर ऑफ आवर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड द स्पिरिचुअल स्टेट.
हम पैसे के बारे में क्या धारणा रखते हैं इस बात का संकेत है कि हमारा आत्मिक जीवन किस प्रकार का.
वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस नेचुरल थिंग्स ऑल द वेल्थ बिलोंग्स टू लॉर्ड.
हमें एक बात पूर्ण रूप से समझनी है कि सब कुछ जो है सारी चीजें धन परमेश्वर का है.
इज ऑल द रिचेस वी ऑब्टेन इट इज फ्रॉम द लॉर्ड.
और जो भी हम धन संपत्ति पाते हैं वो परमेश्वर की तरफ से.
देयर आर लॉट ऑफ रेफरेंसेस इन द स्क्रिप्चर स्पीक्स अबाउट दैट.
ये बाइबल में कई चीजें हैं कई बार कई जगह लिखा है.
वी केम इन दिस वर्ल्ड एम्प्टी हैंडेड.
हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे.
वॉट एवर वी हैव इन अवर पोसेशन इट इज द लॉर्ड हू गेव अस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड.
जो कुछ हमारे पास है हमें ये समझना है कि प्रभु ने उसे दिया है.
एंड वी विल गो वन डे विदाउट टेकिंग इवन वन रूपी फ्रॉम हियर एंड वी हैव टू लीव विदाउट बी एम्प्टी हैंडेड.
और एक इस तरह हम अपने खाली हाथों से इस दुनिया से जाएंगे. एक रुपया भी लेकर नहीं जा सकते.
दिस फैक्ट वी हैव टू रियलाइज every time.
ये सत्य हमें हमेशा हर बार समझना है.
Then we will understand how we have to handle the money that God has given in our hand.
तब हम समझ पाएंगे किस प्रकार जो परमेश्वर ने धन दिया उसे कैसे संभालें.
Deuteronomy chapter 8 verse 18 we will read for time being to make that fact more clear.
इसको व्यवस्था विवरण में
Deuteronomy 8:18
8 और 18 में हम पढ़ते हैं. व्यवस्था विवरण
8:18. But thou shalt remember the Lord thy God.
परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करना.
For it is he who giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he swore unto thy fathers as it is this day.
क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्रदान करने की सामर्थ इसलिए देता है कि तू जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे. आज प्रकट है.
ओके हियर वी सी वन थिंग इज ही हु गिवेथ दी पावर टू गेट वेल्थ.
और ये जो तुम्हें शक्ति देता है संपत्ति प्राप्त करने की.
सो व्हाट एवर वी हैव इन अवर पोजेशन इट इज गॉड हु गेव अस एंड इट इज हु मेड अस टू हैव इट.
तो आज जो कुछ भी है हमारे पास वो परमेश्वर ने हमें दिया है और उसका यूज करने के लिए भी परमेश्वर ने दिया है.
साम 24 वर्स 1 सेज द होल थिंग दैट अंडर थिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड द होल अर्थ एंड हिज ग्लोरी बिलोंग्स टू हिम.
24वें भजन संहिता में पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है.
सो गॉड गिव्स अस व्हेनेवर इट इज नीडेड गॉड गिव्स अस अकॉर्डिंग टू हिज ग्रेशियस डिजायर ही गिव्स अस अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स.
अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें जो कुछ चाहिए और जो कुछ जान जिसकी जरूरत है वो परमेश्वर हमें देता है.
सो दिस फैक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द रिचेस इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड एंड इट इज लॉर्ड हु एंट्रस्टेड दिस इन अवर हैंड.
हमें यह सत्य पूर्ण रूप से समझना है कि जो कुछ भी आता है वो परमेश्वर की तरफ से आता है और परमेश्वर ही हमें देता है.
एंड वी शुड बी वी आर द स्टीवर्ड्स ऑफ द मनी दैट गॉड हैज गिवन टू अस.
वो जो कुछ आता है पैसा उसके हम सिर्फ मालिक नहीं है परंतु उसकी देखरेख करने वाले हैं.
नाउ इन दिस पैरेबल विच इज नॉर्मली वी टेक इट फॉर अ गॉस्पल मीटिंग बट इन दिस पैरेबल इफ यू सी द बैकग्राउंड लॉर्ड इज स्पीकिंग अबाउट द कवेटस मैन.
हम यहां देखते हैं जो दृष्टांत ज्यादातर हम गॉस्पल मीटिंग में बोलते हैं परंतु इसका इसका जो पीछा जो पृष्ठभूमि का है उसके बारे में हम देखते हैं.
लुक्स गॉस्पल चैप्टर 12 वर्स 15 वी सी दैट बिवेयर ऑफ covetousness, that is what the background is.
12 और 15 में ऐसा लिखा है कि चौकस रहो और लोभ से अपने को दूर बचाए रखो.
या टू मेक इट मोर क्लियर अबाउट द covetousness, हियर गॉड लॉर्ड इज ब्रिंगिंग अबाउट अ रिच मैन हुज लैंड वॉज प्लेंटिफुली प्रोड्यूस्ड एंड ही इज वंडरिंग व्हाट टू डू विद दैट.
लोभ के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए प्रभु यहां पर वो जो लालची मनुष्य है उसका दृष्टांत देते हैं.
नाउ द लॉर्ड इज कॉलिंग दिस मैन एज अ फूल.
और परमेश्वर इस मनुष्य को मूर्ख कहता है.
नाउ व्हाई द क्वेश्चन दिस मॉर्निंग आई वाज थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट इट द क्वेश्चन केम टू माय माइंड व्हाई द लॉर्ड इज कॉलिंग हिम ए फूल. इज इट रियली अ फूल व्हेन यू फ्रॉम अ ह्यूमन स्टैंडर्ड.
जब भाई सुबह इसके इस वचन पर मनन कर रहे थे तो उनके सामने प्रश्न आया कि परमेश्वर क्यों इसको मूर्ख कहता है.
यू नो द वर्ल्ड इज नाउ इन अ टाइम वेयर वी आर fully possessed or we are actually captured by the materialism.
हम दुनिया में ये समय आ गया है कि हम सिर्फ दुनिया की चीजों के बारे में ही सोचते हैं और उसमें जकड़े रहते हैं.
As studies indicate, there was an article in one of the journals. They say that this generation is the generation which is completely actually captured by the thinking of materialism.
एक पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि ये जो अभी के जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से इस चीजों के लोभ में जकड़े हुए हैं.
एंड टूडे बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन दैट प्रिंसिपल हैज एंटर्ड इन द चर्च ऑल्सो.
और यही जो सोच है वो आज कलीसिया में भी आ गई.
इट इज नॉट ओनली इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस प्रॉब्लम इज.
हिंदुस्तान में ही नहीं परंतु सारी सृष्टि सारी दुनिया में ये सब समस्या है.
यू नो यू लुक एट दैट टुडेस थियोलॉजिस्ट दे से दैट अबाउट वी नो वेरी वेल दैट इज द हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी. यू मेट हर्ड अबाउट इट.
आजकल के जो वचन पढ़ाने वाले हैं वो यही कहते हैं कि पहले हेल्थ होनी चाहिए फिर धन होना चाहिए और उसके बाद खुशहाली आएगी.
सो दिस थ्री दिस दिस इज नॉट द प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी दिस इज जनरली प्रोपगेटेड एवरीवेयर.
और ये इसको खुशहाली का पढ़ाना कहते हैं.
दैट एंटर्ड इनटू द चर्च बिकॉज द फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड इज मटेरियलिस्टिक फिलोसफी.
और ये इसलिए कलीसिया में आ गई क्योंकि दुनिया की सोच इस प्रकार की.
वेस्टर्न कंट्रीज नॉट ओनली इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न कंट्रीज दे से दैट टू द योगा प्रैक्टिसेस आर इंक्रीजिंग एमंग द क्रिश्चियंस एस्पेशली एमंग द बिलीवर्स ऑल्सो.
पश्चिम के देशों में ऐसा बताते हैं कि योगा जो प्रणाली है वो विश्वासियों के बीच में भी ज्यादा प्रचलित हो रही.
नाउ इवन इन द चर्चेस दे हैव योगा क्लासेस.
आजकल कलीसिया में भी योगा सिखाने की क्लासेस.
एंड दे से दैट द नंबर ऑफ पीपल कमिंग फॉर योगा क्लासेस इज डबल दैन दोज हु आर कमिंग फॉर द बाइबल क्लासेस.
और ऐसा कहते हैं कि योगा क्लासेस योगा सीखने के लिए दुगने लोग आते हैं जितना बाइबल पढ़ने के लिए आते हैं.
आई एम श्योर इफ यू हैव अ योगा क्लास हियर ऑल्सो सेम थिंग हैपेंस आई एम श्योर अबाउट इट.
भाई का पूरा विश्वास है कि अगर योगा क्लासेस यहाँ शुरू हो तो यही चीज हमारी कलीसिया में भी हो सकती है.
बिकॉज एवरीबडी इज कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ.
और ये इसलिए कि अपने स्वास्थ्य के बारे में सब लोग ज्यादा चिंतित.
आई थिंक 10-20 इयर्स अगो व्हेन आई केम टू आईसी कॉलोनी देयर वाज नो जिमनास्टिक्स हियर, नो जिमखाना वाज समथिंग हियर इन आईसी कॉलोनी.
जब 10-20 साल पहले जब भाई यहाँ रहने आए तो कोई भी जिमखाना व्यायामशाला यहाँ नहीं थी.
सो मेनी इवन इन माई लेन इटसेल्फ सो मेनी आर देयर.
और जहाँ भाई आजकल रहते उसी उसके रस्ते पर भी कितनी सारी व्यायामशाला.
यू आर सेल्फ एग्जामिनिंग हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन योर health matters, exercising and reading the God's word. Let me tell you.
आप खुद ही अपने आप को विचार करें कि कितना समय आप अपने स्वास्थ्य को बनाने में रखते हैं और कितना परमेश्वर के वचन के साथ रखते हैं.
We think that we need a health that is more conscious reading the words God's word.
हम ये सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के वचन पढ़ने से.
The word of God Paul says the health, this exercise is good. He said little profit, that's all. But more profit is God's word. Let me tell you.
Paulus ऐसा कहता है कि हाँ सेहत बनाना अच्छा है परंतु उससे ज्यादा अच्छा ज्यादा फायदेमंद परमेश्वर का वचन.
I'm not against having a good health. That we need to good health. We have to take care of health. No doubt.
भाई ऐसा नहीं कहते कि सेहत बनाना खराब है. But अच्छी सेहत होनी चाहिए.
हाउ मच प्रोपोर्शनेटली वी आर स्पेंडिंग टाइम इन ऑल दिस मैटर्स.
पर कितना समय हम इन सब चीजों में व्यस्त करते हैं वो जरूरी है.
सो दिस टू फैक्टर्स हेल्थ एंड वेल्थ इज वन ऑफ द थिंग एज एक्चुअली केम इन टू द माइंड ऑफ द बिलीवर्स.
और ये स्वास्थ्य और पैसा विश्वासियों के मन में घर कर गया.
हियर इज एन एग्जाम्पल लॉर्ड इज गिविंग अबाउट अ कवेटियस मैन. लेट मी कॉल हिम अ कवेटियस मैन.
और यहाँ एक लालची मनुष्य के बारे में परमेश्वर एक दृष्टांत देता है.
एंड गॉड इज कॉलिंग हिम इज अ फूल.
और परमेश्वर उसको मूर्ख कहता है.
ऑफकोर्स फ्रॉम अ ह्यूमन स्टैंडर्ड फ्रॉम द मॉडर्न कंसेप्ट ही इज नॉट अ फूल. इट सीम्स टू बी ही इज अ वाइज मैन.
परंतु मनुष्य के रूप समझ में वो एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है.
बट व्हाई लॉर्ड इज टेलिंग हिम एज अ फूल.
परंतु परमेश्वर उसको मूर्ख क्यों कहता है.
यू लुक एट द होल वर्स 16 onwards. वन फ्यू थिंग्स आर अपियरिंग अगेन एंड अगेन.
16वीं आयत से जब हम पढ़ते तो कुछ चीजें बार बार हमारे सामने आती हैं.
यू काउंट इट आई मी माइन. यू शुड काउंट इट हाउ मच टाइम इट अपियर.
ये गिने कि मैं मेरा और मुझ मेरा.
आई विल बिल्ड
मैं
माई बॉन्ड माई मिलान. यू नो ऑल इज आई मी मी. दैट इज ऑल इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेल्फ.
मेरा सब कुछ हमें साफ दिखता रहता है.
इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 11 टाइम्स द वर्ड आई माई इज अपियरिंग हियर.
और ऐसा दिखाया है कि इस जगह पर 11 बार मैं मेरा ऐसे शब्द आए.
यू लुक एट वर्स 17 एंड 18 से एंड ही ब्रॉट विद इन हिमसेल्फ सेइंग व्हाट शैल आई डू. Because I have no place to bestow my. You look at that, verse 17 itself. Again, verse 18 we say, this will I do, I will pull my bonds and build a greater one, and there will I bestow all my crops and my goods. See, my I is repeatedly appearing there.
17 में और 18 में हम कई बार पढ़ते कि मैं क्या करूँ, मेरी जगह नहीं है, मेरी उपज. इस तरह के कई चीजें बार बार मैं और मेरा आता है.
दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर दैट दिस मैन इज नथिंग टू थिंक अबाउट गॉड. ही इज नॉट टेलिंग द गॉड हैज गिवन मी. ही इज नॉट टेलिंग दैट गॉड हैज गिवन ऑल द बेनिफिट टू मी. आई शुड हॉनर प्रेज हिम. नथिंग इज मेंशन अबाउट गॉड.
और यहाँ से साफ तरीके से पता चलता है कि परमेश्वर के बारे में इस मनुष्य के मन में कोई विचार नहीं है.
So,
ऐसा नहीं कहता कि परमेश्वर ने ये मुझे दिया.
लॉर्ड इज कॉलिंग हिम फूल बिकॉज ही एक्सक्लूडेड गॉड फ्रॉम हिज लाइफ.
परमेश्वर उसे मूर्ख इसलिए कहता है कि उसने पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपने जीवन से अलग कर दिया.
ही सेज नो टू गॉड.
उसने परमेश्वर को ना कह दिया.
एल्सवेयर इन साम वी रीड दैट द फूल सेथ.
ऐसे कई वचन संहिता में हम एक जगह पढ़ते हैं कि मूर्ख कहता है
इज नो गॉड.
कि परमेश्वर नहीं है.
वी रीड दैट वर्स देयर आर ट्वाइस इट अपीयर्स द साम.
वचन संहिता में वचन पढ़ेंगे
वर्स 14 वी रीड
साम वचन 14.
द फूल हैथ सेड इन हिज हार्ट.
मूर्ख ने अपने मन में कहा
देयर इज नो गॉड. एक्चुअली इफ यू नोटिस दैट इन बाइबल देयर इज दैट इज इन इटैलिक्स. नोटिस दैट इट इज इन इटैलिक्स. इट्स इन That means the italic shows that in the original that word is not there. There is.
Actually, Hindi में बराबर नहीं है. वहाँ पे ऐसा लिखा है कि कोई की जगह नहीं होना चाहिए.
Actually, the word is like that. The fool hath said in his heart, नो गॉड
एक्चुअली सच्चाई में ऐसा वचन होना चाहिए कि मूर्ख ने अपने मन में कहा नहीं परमेश्वर.
When we read, we looks like he is an atheist. He is not an atheist in fact.
हम ये अगर पढ़ते तो हमें लगता है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला नहीं.
I would like to call him an agnostic.
परंतु हम उसको I don't know what
agnostic means. The God is there, but if he is there, let him do his business. I will do my business. That is the meaning.
Agnostic वो व्यक्ति होता है जो कहता है कि हाँ परमेश्वर है परंतु परमेश्वर को अपना कार्य करने दो मैं अपना कार्य करूँ.
God may be there.
परमेश्वर हो सकता
है. But I have nothing to do with him.
पर मैं उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता.
Such a person is known as agnostic.
इसको agnostic व्यक्ति कहते हैं.
जवाहरलाल नेहरू was considered as an agnostic.
जवाहरलाल नेहरू एक इस प्रकार के agnostic.
So what I mean is that actually this man is an agnostic, or he says that he will say no to God. That is the meaning.
ये agnostic व्यक्ति है वो कहता है कि परमेश्वर को हमेशा ना ही करेगा.
God, when God asks something to do, he will say no.
परमेश्वर उसको कुछ करने के लिए कहता है तो वो ना ही कहता.
No, some children are there. They always know answer is no only, isn't it? Whatever the parents say, everything they say no.
कई बालक ऐसे होते हैं जिनको हमेशा कुछ बोलो तो वो ना ही बोलते हैं.
This person is like that.
ये व्यक्ति ऐसा है.
He will say no to God.
वो परमेश्वर को ना कहेगा.
Oh no God, no I don't want. That is the thing.
वो कहता नहीं मैं मुझे नहीं चाहिए.
From his life he removed God.
ऐसा है कि अपने जीवन से उसने परमेश्वर को अलग कर दिया.
See, this man was abundantly blessed by the Lord, but he is not thinking about God.
ये परमेश्वर की तरफ से इस व्यक्ति को बहुत सारी चीजें मिली थी पर फिर भी वो उसके बारे में नहीं सोच रहा.
11 times it is mentioned, I, me, my.
11 बार वो मैं मेरा और मेरा है.
He excluded God from his life.
अपने जीवन से उसने परमेश्वर को अलग कर दिया.
This should not happen to any one of us.
ये हमारे जीवन में नहीं होना
चाहिए. God may bless us abundantly.
परमेश्वर हमें बहुत सारे वरदान देता
है. But whenever we receive that, we have to thank God. God, I received everything from thee. I thank thee and praise thee.
जब परमेश्वर से हमें वरदान मिलता है तो ये कहना है कि हाँ परमेश्वर आपने हमें दिया है
Here,
और उसका धन्यवाद देना.
We see the ground was plentifully produced a lot. He says that Lord, you gave me everything.
देखते कि उसके खेत में बहुत सारी उपज है तो तब कहना चाहिए था कि हाँ परमेश्वर ये आपने दिया है.
ओ गॉड यू गिव मी द पावर टू ऑब्टेन दिस वेल्थ.
तुम आपने मुझे ये शक्ति दी है इस धन कमाने की.
सो गॉड इज कॉलिंग दिस मैन इज अ फूल बिकॉज ही ओमिटेड और डिलीटेड गॉड फ्रॉम हिज लाइफ.
क्यों इसको परमेश्वर इस मनुष्य को मूर्ख कहता है क्योंकि उसने अपने जीवन से परमेश्वर को मिटा दिया था.
सो गॉड सेकेंडली वी सी दैट वर्स They say that he realized that, he thought that he can control his life with the wealth.
और दूसरी चीजें हम देखते हैं कि वो ये सोचता था कि अपने जीवन के ऊपर वो धन से हावी हो सकता.
See verse 19 what he says, I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid for many years. Take thine ease, eat, drink and be merry. This is the philosophy.
19वें वचन में वो क्या सोचता है उसके बारे में पता है. और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे.
Many years he wants to live.
बहुत सारे वर्ष वो रहना चाहता है.
He thought that the wealth is actually because of wealth he can control his life.
वो ये इस प्रकार का सोचता था कि क्योंकि पास बहुत धन है वो अपने जीवन पर हावी हो सकता है.
But verse 20, the what God says about that.
परंतु 20वीं आयत में परमेश्वर उससे क्या
कहता है. God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be demanded or required of thee.
और वो कहता है परंतु परमेश्वर ने कहा हे मूर्ख इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे.
I do believe that day, that night he might have had a heart attack or something, he might have died.
और हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक आके वो रात को मर गया.
द वर्ड रिक्वायर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट.
वहां से ऐसा है कि ले लिया जाएगा.
द वर्ड रिक्वायर्ड और डिमांडेड एक्चुअली मीन्स समथिंग गिवन एज अ लोन एंड आस्किंग द लोन बैक. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट.
और ये इस प्रकार का शब्द है जिसका मतलब ये है कि कोई ऋण दिया है और वो ऋण को वापस लेना है.
गॉड इज टेलिंग योर लाइफ इज ओनली अ लोन.
परमेश्वर कहता है कि जो तुझे जीवन मिला है
यू हैव नो राइट अपॉन योर लाइफ.
तेरे जीवन पे तेरा कोई अधिकार नहीं.
आई हैव गिवन योर लाइफ एज अ लोन एट एनी टाइम आई कैन विदड्रॉ दैट आई कैन टेक इट बैक.
और मैंने तुझे तेरा जीवन एक ऋण की तरह दिया है और किसी समय वो ऋण को वापस ले सकता हूँ.
दिस रिच मैन फेल टू रियलाइज दैट.
ये जो धनी व्यक्ति था ये इस बात की समझ में नहीं समझ
पाया. ही थॉट विद हिज रिचेस ही कैन कंट्रोल हिज लाइफ.
और इसने सोचा कि उसके धन से वो अपने जीवन पर काबू पा सकता.
दैट इज व्हाई गॉड इज टेलिंग दैट यू आर अ फूल.
इसलिए परमेश्वर उसे कहता है कि तू मूर्ख.
द लाइफ विच इज गिवन टू यू इज ओनली अ लोन. you have to handle it carefully.
जो जीवन तुझे दिया है वो सिर्फ एक ऋण है, उसको ध्यान से सोच।
You have no right upon that.
उसके ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं।
It is me who has given you the life.
मैं हूँ जिसने तुझे जीवन दिया।
At any moment I can withdraw that.
किसी भी क्षण मैं उससे वापस ले सकता।
I will require it. I will call it back.
मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे वापस बुला सकता।
Even tonight it can happen.
आज रात ये हो सकता है।
So this man never realized this truth.
और ये बात उस आदमी के समझ में नहीं आई।
He was a fool because he failed to realize that the life is a loan from God.
वो इसलिए मूर्ख था कि वो नहीं समझ पाया कि जीवन परमेश्वर की तरफ से एक ऋण है।
He thought that by his wealth, his money, he can control his life.
वो उसने ये सोचा कि अपने धन से वो अपना जीवन के ऊपर काबू पा सकता।
So whenever wealth is coming, we have to realize any time we have to give it back.
और जब हमारे जीवन में धन आता है तो हमें ये सोचना है कि किसी भी समय वो वापस लिया जा सकता है।
As we know the story of Alexander, probably he was the man who conquered the whole world. He's the only man in the history I see he conquered the whole world.
Alexander के बारे में हम जानते हैं इतिहास से कि वो एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसने पूरी दुनिया पर शायद काबू पा लिया।
He conquered the whole known world of that time.
उस समय की जो दुनिया के जानी हुई दुनिया थी।
And we see that he is dying in the Babylon. While he was dying in the Babylon,
बाबुल में जब वो मर रहा था,
he told the people,
उसने लोगों से कहा,
I conquered the whole world.
मैंने सारी दुनिया पर विजय पाई.
But now I am dying.
परंतु अब मैं मर रहा हूँ.
When I die,
जब मैं मरूंगा,
when you are keeping the coffin,
जब आप मुझे तबूत में डालोगे,
you have to do one thing.
एक चीज करना,
keep my both hands outside.
मेरे दोनों हाथ उस तबूत से बाहर रखना.
Alexander came in the world empty-handed.
अलेक्जेंडर जो था वो दुनिया में खाली हाथ आया था।
And he conquered the whole world, but he's going empty-handed.
दुनिया पर विजय पाने के बावजूद भी वो खाली हाथ से वापस जा रहा
था। This fact we should realize.
ये सत्य हमें जानना है।
Our life is only a loan.
हमारा जीवन एक ऋण है।
Our wealth cannot control our life.
धन हमारे जीवन पर हावी नहीं हो सकता।
So this fool, he was a fool. God calls him because he failed to realize.
इसलिए ये मूर्ख, एक मूर्ख था क्योंकि वो अपने जीवन पर नहीं हावी हो सकता।
Now the another important thing about him, we read the last verse 21. So is he that layeth up treasures for himself and he is not rich toward God.
किस बात पे ऐसा लिखा है? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं।
परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इन द आईज ऑफ गॉड इज नॉट रिच।
इन परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है।
ही इज एक्यूमुलेटिंग ट्रेजर फॉर हिमसेल्फ।
वो अपने लिए धन बटोरता है।
ही वॉज ए फूल।
वो मनुष्य मूर्ख था।
बिकॉज हिज इन्वेस्टमेंट प्लान वॉज ए टेम्परल नॉट परमानेंट।
क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट प्लान था वो क्षणिक था, आनंद काल के लिए नहीं था।
Sometimes we wonder that he is very good planning and very good investment planning he had.
So कई बार हम सोचते हैं कि उसने अच्छा अपने पैसे का इस्तेमाल किया था।
When God looked at him,
तो परंतु जब परमेश्वर ने उसे देखा,
God says that you accumulated wealth for yourself.
तो उसने परमेश्वर ने कहा कि तूने तो अपने लिए धन बटोरा।
You never accumulated wealth in terms of God.
तो परंतु मेरे लिए, मेरे मनुष्य के, परमेश्वर के दुनिया में तूने धन नहीं बटोरा।
That means he was thinking about the present world, that's all.
वो उसी समय की दुनिया के बारे में सोच रहा था।
He never thought of eternity.
आनंद काल के बारे में उसने नहीं सोचा।
I am sure you might have heard about the Jim Elliot.
जिम एलियट के व्यक्ति था, उसके बारे में आपने
सुना होगा। यंग एज ही ऑफर्ड हिज लाइफ एज अ सैक्रिफाइस इन द मिशनरी वर्क।
मिशनरी जगह में उसने अपने जीवन को एक सैक्रिफाइस की तरह।
ही वॉन्ट्स टू गो एंड प्रीच द गॉस्पल टू द ओका ट्राइबल्स। इन फैक्ट
ओका ट्राइबल जो थे जंगली लोग, उनके बीच में जाके
टू प्रीच द गॉस्पल दे।
और वहां उनके परमेश्वर का वचन लेकर एक छोटी आयु में वहां गया।
आई होप सम ऑफ यू मे रेड दैट ब्यूटिफुल बायोग्राफी ऑफ जिम एलियट।
हो सकता है कि उसके बारे में आपने उसकी जीवनी पढ़ी हो।
ही वॉज किल्ड बाय दिस ट्राइबल पीपल।
और ये जंगली लोगों ने उसे मार दिया।
Later on his wife and the child went and really evangelized the whole village and now many came to the Lord out of that.
उसके मरने के बाद उसकी बीवी और बच्चा उसी गांव में गए और परमेश्वर के बारे में बताया और आज उस जगह में बहुत से विश्वासी लोग,
इफ यू हैव नॉट रेड दैट बुक प्लीज रीड जिम मिलियट्स वंडरफुल मिशनरी स्टोरी इट इज,
और जिम मिलियट के जीवनी को आप जरूर पढ़िए, उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं।
एंड व्हेन ही वाज एन इन अ कॉलेज एंड यूज्ड टू राइट, ही मेड अ स्टेटमेंट, ऑलवेज कीप्स अ डायरी एंड इन हिज डायरी ही हैज रिटन लाइक दैट।
वो जब पढ़ रहा था तो उसने एक डायरी लिखी थी, उसमें ये ऐसा लिखा था,
ही इज नॉट अ फूल हु गिव्स अवे विच ही कैन नॉट कीप।
वो मूर्ख नहीं है जो वो चीज दे देता है जिसको वो रख नहीं सकता,
टू गेन दैट विच विल नॉट लूज,
उस चीज को पाने के लिए जो कभी गुम नहीं हो सकती, खो नहीं सकती।
आई विल रिपीट इट अगेन,
मैं दोबारा उसको बताएंगे,
ही इज नॉट अ फूल हु गिव्स अवे दैट विच ही कैन नॉट कीप।
वो मूर्ख नहीं है जो वो चीज को दे देता है, उस चीज को देता है जिसको वो रख नहीं सकता,
टू गेन समथिंग विच ही विल नॉट लूज,
उस चीज को पाने के लिए कि जो कभी उससे खो नहीं सकती।
ही न्यू दैट वन डे ही मे हैव टू डाई,
वो जानता था कि एक दिन वो मरना है।
लेट माई लाइफ गो नो प्रॉब्लम,
मेरा जीवन जाए कोई मुसीबत नहीं,
बट आई एम गोइंग टू गेन मच मोर देन दैट विच विल नेवर लूज,
परंतु मैं ऐसी चीज को पाऊंगा जो कभी खोएगी नहीं।
बट दिस मैन नेवर थॉट ऑफ दैट,
परंतु ये व्यक्ति जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो किसने ऐसा
कभी सोचा नहीं। He accumulated the wealth which is on this earth and it will go very fast,
उसने वो धन इकट्ठा किया इस दुनिया में जो कभी भी जा सकता
है। He should have thought of the eternity,
वो आनंद काल के बारे में सोचना था।
He should have invested money in the heaven.
और वहां पर पैसा एक बटोरना था।
How we are giving to the Lord?
परमेश्वर को हम किस प्रकार देते हैं?
How is our attitude towards our money?
पैसे के बारे में हमारी क्या धारणा है?
We have to think about it.
इन चीजों के बारे में सोचो।
Am I a covetous man?
क्या मैं एक लोभी मनुष्य हूँ?
This man was a covetous. That's what the Lord says.
ये परमेश्वर इस व्यक्ति को लोभी कहता है।
God calls he was giving this parable because he is saying that beware of covetousness.
और ये इसलिए कि प्रभु इस दृष्टांत को इसलिए देता है कि वो कहता है कि लोभ से दूर रहो।
Our attitude towards money is a very clear indicator of our spiritual state.
पैसे के बारे में हमारी धारणा उस बात हमारे आत्मिक जीवन का अच्छा संकेत देता है।
As somebody has rightly said, a poor man may be more greedy or he is having a lot of greed than a rich man.
किसी ने सही तरीके से कहा है कि एक जो गरीब मनुष्य है वो ज्यादा लोभी एक धनवान मनुष्य से हो सकता है।
Sometimes we feel that the poor people they don't have greed.
जो हम कई बार हम सोचते हैं कि जो गरीब है उनमें लोभ नहीं।
Greed is the attitude of our heart.
जो लोभ है वो हमारे मन का की धारणा।
He is not speaking about the amount of money in our hand.
वो उस हमारे हाथ में कितना पैसा है उसके बारे में नहीं बताता।
So examine our heart. Am I a greedy or a covetous man?
हमें अपने मन को परखना है कि हम एक लोभी मनुष्य तो नहीं।
See, I am not against having any material things. Whatever God has given, thankfully use it and praise God for that.
भाई उस चीज के बारे में against नहीं है कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है।
I always used to tell that Abraham was the richest man. Probably none of us are coming closer, even nearest to him.
हम भाई हमेशा प्रचार करते कि अब्राहम सबसे धनी मनुष्य था। हम कोई भी उसके धन के सामने आ नहीं सकते।
Your job was a very rich man.
जॉब भी जो था अयूब वो भी बहुत।
बट देयर होल एटीट्यूड टुवर्ड्स द मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उनके पैसे के बारे में क्या धारणा थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट।
यू लुक एट अब्राहम एंड लूत, यू सी द एटीट्यूड इज वेरी डिफरेंट।
अब्राहम और लूत के बारे में हम देखते तो उनकी जो धारणा थी वो पता चलता।
आई थिंक कंपेरेटिवली लूत एंड अब्राहम, एक्चुअली अब्राहम वॉज मच मोर रिचर देन लूत।
हम अगर दोनों को इकट्ठा रखे तो जो अब्राहम था वो ज्यादा धनी था।
बट द एटीट्यूड वॉज डिफरेंट,
परंतु उसकी धारणा पैसे के बारे में।
अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स द मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
धन के बारे में हम क्या सोचते हैं वो ज्यादा जरूरी।
व्हेन गॉड गिव समथिंग फॉर अस, लेट अस इन्वेस्ट इन द हेवनली रिलम।
जब परमेश्वर हमें देता है तो स्वर्गीय जग स्थान में उसके रखें।
इफ गॉड विलिंग आई विल कंटिन्यू दिस सब्जेक्ट बिकॉज आई फेल्ट इट इज अ सब्जेक्ट विच नीड्स टू बी कंसिडर इन टू मच मोर डिटेल।
परमेश्वर की इच्छा हो तो भाई इस जो वचन को और आगे बढ़ाएंगे।
सो लेट अस थिंक अबाउट दैट, आम आई ए फूल।
हमें क्या सोचे कि क्या मैं मूर्ख हूँ?
हियर इज अ फूल, द लॉर्ड कॉल्स हिम अ फूल।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस मनुष्य को मूर्ख कहता है।
He excluded God from his life.
क्योंकि उसने अपने जीवन से परमेश्वर को अलग कर दिया था।
He never realized that his life is only a loan from God.
उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका जो जीवन है वो परमेश्वर की तरफ से एक ऋण है।
He thought that his wealth can control his life and he can enjoy this world.
वो ये सोचता था कि उसके धन से वो अपने जीवन पर हावी हो सकता है।
The third thing, he never realized that there is an eternity where he needs to invest his money.
उसने ये तीसरी चीज, उसने ये सोचा ही नहीं था कि एक अनंत काल के जीवन में भी धन डालना है.
Yes, he was rich for himself. He was in the sight of God. He was not rich.
अपने लिए वो धनी था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं था.
May God help us to examine our own life and our attitude towards money.
परमेश्वर हमें मदद करे कि हम अपने जीवन और अपनी धारणा के बारे में सोच पाएं.
God bless us.